आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
वृंदावन नगरी की पहचान भगवान श्री कृष्ण की नगरी से होती है। यहाँ पर रहने वाली हजारों निराश्रित और परित्यक्त विधवाओं की पीड़ा भी वर्षों से समाज के सामने एक गंभीर प्रश्न रही है। इन महिलाओं के जीवन को सम्मान और मृत्यु के बाद गरिमा प्रदान करने का जो अद्भुत कार्य डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने किया है वो बेमिसाल है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने बचपन से ही वृंदावन की गलियों में सफ़ेद साड़ी पहने परिवार से बिछड़ी और उपेक्षित विधवाओं का जीवन देखा। उनके मन में यह प्रश्न उठता था कि इन महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। यही संवेदना आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गई। उन्होंने कनकधारा फाउंडेशन की स्थापना कर निराश्रित विधवाओं, बुजुर्ग महिलाओं तथा असहाय लोगों के लिए भोजन, आश्रय, चिकित्सा, कानूनी सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था शुरू की। उनका सबसे उल्लेखनीय कार्य उन विधवाओं और लावारिस महिलाओं का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराना है जिनके निधन के बाद उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं होता। वो स्वयं शमशान घाट पहुंचकर सभी धार्मिक रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार कराती हैं ताकि किसी भी महिला की विदाई अपमानजनक परिस्थितियों में ना हो। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने अब तक सैकड़ों ही नहीं बल्कि 1000 से अधिक निराश्रित महिलाओं और अन्य लावारिस व्यक्तियों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया है। उनके इस कार्य ने समाज को ये संदेश दिया कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। समाज सेवा के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें वृंदावन की एंजल के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम बताती हैं।
नमस्कार, मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं वृंदावन की भूमि से हूँ। वृंदावन जो विश्व के मानचित्र पर भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में जाना जाता है, मेरा जन्म भी वही हुआ, यानी जन्मभूमि भी वही है और कर्म भूमि भी वही है। मैं वृंदावन की बेटी भी हूँ और वृंदावन में ही मेरा विवाह हुआ। अब वृंदावन से हूँ तो वृंदावन की एक सामान्य यदि हम दृष्टिपात करें तो यहाँ सैकड़ों वर्षों का इतिहास रहा है कि पश्चिम बंगाल से या देश के अन्य प्रदेशों से मोक्ष की कामना से यहाँ जो माताएं आती हैं उनमें ज्यादातर विधवा माताएं रहती हैं। और विधवा किसको कहा जाता है मैं नहीं समझ पाती हूँ, आज तक नहीं समझ पाई कि एक पति के मरने के बाद में किसी स्त्री को विधवा नाम देना कितना उचित है या उसके साथ कितना मानवीयता का परिचायक है। और ऐसा ही होता आया है कि हमारे यहाँ एक स्त्री के पति मरते ही उसको विधवा शब्द का से संबोधित किया जाता है। तो ये विधवा माताएं मेरे स्वर्गीय पिताजी चूंकि तीर्थ पुरोहित थे तो पश्चिम बंगाल से हमारे यहाँ वर्ष भर इन माताओं का आना लगा रहता था। तो एक बाल मन का कौतूहल था कि ये महिलाएं अन्य महिलाओं से अलग कैसे, जैसे उनके सर पर बाल नहीं होते थे, वो सफेद मैली कुचैली सी साड़ी पहने होती थी, उनके हाथ में कोई चूड़ी कंगन या साखा नहीं होता था या सिर पर सिंदूर नहीं होता था। तो एक बाल मन का जो एक स्वाभाविक कौतूहल था उसने इस जिज्ञासा को जन्म दिया और उसने वो जान के ही दम लिया कि ये विधवाएं हैं। मैं आपको बताऊं कि मुझे विधवा शब्द से मेरा बिल्कुल भी जो मेरा लगाव है वो बहुत ही ऐसा है कि यदि इस विधवा शब्द को धर्म शास्त्रों के इतिहास से, सामाजिक व्यवहार से और कानून की किताब से इसे यदि खत्म कर दिया जाए, उसका अपना नाम है, वो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बुआ या और भी रिश्ते हैं, तो उसको विधवा, और फिर उसका अपना नाम है जो उसके परिवार, उसके माता पिता ने उसको दिया है, तो हम उसके नाम को छोड़कर, उसके सारे संबंधों को छोड़कर केवल विधवा नाम से उसको यदि हम पुकारें तो ये मानवीयता की संवेदनहीनता कही जाएगी। ये माताएं वृंदावन में आती हैं और वर्षों से यहाँ गलियों में, कुंज गलियों में घूम घूम कर भिक्षावृत्ति करके, काम करके अपना जीवन यापन करती हैं और यहीं की रज में विलीन हो जाती हैं। इन माताओं की देखकर हृदय में जो पीड़ा हुई, उसी ने संकल्प को जन्म दिया कि इन माताओं के लिए कुछ करना है। और जब 2011 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक सर्वे आया, उस सर्वे से मुझे मालूम पड़ा कि इन माताओं का अंतिम संस्कार सम्मानजनक ढंग से नहीं होता, जो कि इनका नैतिक अधिकार ही नहीं, संवैधानिक अधिकार भी है। तो मैंने इस प्रण को लिया कि आज से वृंदावन की भूमि पर मरने वाली कोई माता लावारिस नहीं होगी। और वैसे भी लावारिस हम क्यों कहें, सबका वारिस ऊपर वाला है। तो लावारिस के रूप में यदि कोई शव की पुलिस सूचना देती है, या सड़क पर, या कोठरी में, या मंदिर के चबूतरे पे, या परिक्रमा मार्ग में, या यमुना के किनारे मुझे सूचना मिलती है, तो उस माता के या उस साधु के, अब तो मैं पुरुषों का भी अंतिम संस्कार पिछले 11 साल से कर रही हूँ, उससे पूर्व मैं केवल महिलाओं का करती थी, तो उस माता को उठाकर, उसको स्नान कराकर सनातन पद्धति से उसका अंतिम संस्कार करती हूँ।
सब कुछ इतना सरल नहीं था। डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को भी सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अपने ध्येय से नहीं हटी। वे बताती हैं।
स्वाभाविक है कि जब लीक से हट के काम होता है तो उस पर आवाजें उठती हैं, उंगली उठती हैं, विरोध होता है, परंतु दृढ़ संकल्प, सत्य निष्ठा और काम करने की जिजीविषा, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की क्षमता यदि किसी में है और ईश्वर उसे देता है तो वो काम होता है। और यही हुआ कि 2012 से मैंने इस काम को शुरू किया है, जो आज तक अनवरत रूप से चल रहा है। मुझे कहीं से सूचना मिले, चाहे रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, गर्मी की दोपहर हो, ठंड की रात हो, मैं ये नहीं देखती कि मौसम क्या कह रहा है, समय क्या कह रहा है, स्थान क्या कह रहा है, मरने वाला स्त्री है या पुरुष है, मरने वाले का जाति धर्म क्या है, मरने वाले की उम्र क्या है, मरने वाले का नाम पता है कि नहीं। बस मुझे केवल ये लगता है कि एक निर्जीव देह है जिसको अग्नि में मिलाना मेरा परम संकल्प है और पावन कर्तव्य है। तो आवाजें उठती हैं, पर उन आवाजों की फिक्र न करके, चिंता न करके अपने काम की तरफ आगे बढ़ना, ये तो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है।
डॉक्टर लक्ष्मी गौतम को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी वे सम्मानित हुई हैं। उनको वृंदावन की एंजल यानी एंजल ऑफ वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। आज उनसे प्रशासन भी संपर्क करता है जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है।
ये वृंदावन में इस नालसा के सर्वे के बाद में यहाँ इन माताओं के रहने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। कुछ एनजीओज भी बहुत अच्छे से इन माताओं की देखरेख कर रहे हैं, परंतु अभी भी भारी संख्या में माताएं किराए के कमरों में, या कहिए कि सड़क पर, फुटपाथ पर भी रहती हैं, कमरों में भी रहती हैं, कोठरियों में भी रहती हैं, या इसके अलावा कोई इनको पेंशन में गड़बड़ होती है, या बैंक से रिलेटेड कोई समस्या होती है, या अस्पताल में दिखाने में कोई समस्या होती है, या किसी के पास छत नहीं है, या जो बीमार है उसके लिए दवा के लिए पैसे नहीं है, या सड़क पर कोई माता मरी हुई है, या उसे कोई विकलांग है, कोई असहाय है जिसको देखने वाला नहीं है, तो उसे आश्रम तक पहुंचाने का काम, उसके लिए दवा की व्यवस्था करना, उसके लिए छत की व्यवस्था करना, उसके लिए खाने कपड़े की व्यवस्था, जितना मैं कर पाती हूँ करने की भरसक कोशिश करती हूँ। देखिए, एंजेल ऑफ वृंदावन 2015 में जब राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला था, तो वही फोन आया था मुंबई से डीएनए पेपर का, और उन्होंने पूछा था कि आप शवों का अंतिम संस्कार करती हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश से पहला नारी शक्ति पुरस्कार आपको मिला है, तो आपको डर नहीं लगता? तो मैंने कहा नहीं, मुर्दों से नहीं लगता, जिंदों से लगता है। तो उन्होंने मुझे एंजेल ऑफ वृंदावन का नाम दिया। तो अब देखिए, शव मिलते हैं तो पुलिस को जब सूचना मिलती है तो पुलिस भी हेल्प लेती है, कोई बेटी मिलती है तो उसके लिए भी पुलिस हेल्प मांगती है, इसके अलावा कोई बुजुर्ग महिला सड़क पर पड़ी है और मेरे पास खबर आई है, तो मैं सबसे पहले उसकी पुलिस से सूचना देकर कि ये महिला मुझे मिली है और मैं इसको घर लेके जा रही हूँ, और इसका परिवार वाले यदि आपसे, तो पुलिस का और प्रशासन का और हमारा काम, क्योंकि कोई भी डेड बॉडी मिलने पर सबसे पहले हम पुलिस को सूचना देते हैं, क्योंकि वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने के ही बाद हम किसी का अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये तालमेल है कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, ये मेरा एक संकल्प है और उनकी ड्यूटी है, तो ये संकल्प और ड्यूटी मिलके चल रहे हैं।
डॉक्टर लक्ष्मी गौतम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची सेवा केवल जीवित लोगों की सहायता तक सीमित नहीं होती, बल्कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन और मृत दोनों अवस्थाओं में सम्मान दिलाना भी मानवता का सर्वोच्च धर्म है। लखनऊ से फैसल फरीद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।